मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 4 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे सफलता के कुछ प्रतिमानों के बारे में बात करने जा रहा हूं और सच पूछे तो मैंने प्रतिमान शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया है, रहस्य शब्द का नहीं। लोगों को लगता है कि जैसे सफलता कोई रहस्य होती है, मुझे नहीं लगता कि सफलता कोई रहस्य है। इसके बड़े जाने पहचाने माने और स्थापित सिद्धांत हैं, विचार हैं, जिन्हें हम बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। और सच पूछिए तो मैं यह बात डेफिनेटली किसी के माध्यम से आपके सामने शुरुआत में रखूंगा, लेकिन यह रख मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि इस सिद्धांत पर मेरा खुद का भी बहुत अधिक भरोसा है। दरअसल मेरे पास बहुत से ऐसे मेल आते हैं, और आज से नहीं, पिछले 5-6 साल से, जब से इस मेल का जमाना शुरू हुआ है, तब से कि सर मैं अपने गांव में ही रहकर आईएएस बनना चाहता हूं, मुझे ये सुविधा नहीं मिलती लेकिन मैं बनना चाहता हूं, मैं ये नहीं कर सकता लेकिन मैं ये बनना चाहता हूं। केवल आईएएस के बारे में ही नहीं, दूसरी चीजों के बारे में भी। इसका मतलब है कि बनने की इच्छा तो है, हमारी होती है और ये अच्छी इच्छा है। अगर बड़ा कोई बनना चाहता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपनी शर्तों पर कि मैं स्वर्ग तो जाना चाहता हूं लेकिन मरना नहीं चाहता, लगभग कुछ ऐसी ही स्थिति हो जाती है। फिर भारतीय दर्शन में क्या कहा गया, दर्शन तो मैं नहीं कहूंगा, सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लोग क्या कहते हैं, अरे अरे जिसको बनना होता है वो कहीं भी बन जाता है, जिसको करना होता है वो कहीं भी कर लेता है, सूरज को कौन रोक सका है, फूल चाहे जंगल में ही क्यों न खिले उसकी खुशबू तो चारों तरफ फैलती ही फैलती है, खुशबू को कौन रोक सकता है, इस तरह की बातें करते हैं। और जब इस तरह की बातें हम सुनते हैं, क्योंकि उस एज में जब हम इन संघर्षों के दौर से गुजर रहते हैं, हम इतने मेच्योर नहीं होते कि उनके इन कथनों को समझ सकें, सही अर्थों में हम समझ सके। बेसिकली इस तरह की जो कहावतें हैं, जो कथन है, वो केवल मोटिवेट करने के लिए है, फॉलो करने के लिए नहीं। देखिए दोनों में बहुत फर्क होता है। मोटिवेट करने का तो मतलब है कि एक व्यक्ति सोया हुआ है, उसको जगाना है, क्योंकि जब तक वो जागेगा नहीं आगे कुछ कर ही नहीं सकता ना। तो सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात तो यही है कि उसको जगाया जाए। तो कैसे जगाएंगे, तो आप मोटिवेट करते हैं इस तरह के वाक्यों से, आप उसके अंदर की जो सोई हुई ऊर्जा है उसे जागृत करते हैं, फिर वो जग जाता है। तो अब जग जाने के बाद अब आप उसे मोटिवेट करके कुछ सफलता तक नहीं ले जा सकते कि वो बैठा हुआ और आप मोटिवेट करते रहिए और वो मोटिवेट होता रहे। अरे भैया, उसे फिर जहां जाना है उसकी दिशा तय करके और फिर चलना पड़ेगा, और प्लान तरीके से चलना पड़ेगा, तब जाकर के वो पहुंच पाएगा। तो वो समझता है कि नहीं नहीं बस, चूंकि सूरज को कोई नहीं रोक सकता है और मैं भी नहीं रुकूंगा, मैं भी एक सूरज हूं, पता नहीं क्या क्या मान करके। मित्रों, हम उस गलत फहमी में पड़ जाते हैं और ऐसा आज भी हो रहा है, जबकि विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका, लाइफ को लेकर के इतनी रिसर्चेज हो चुकी है, लेकिन हमारे आबादी का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद युवाओं का सबसे बड़ा हिस्सा जो है, वो अभी भी इसी बात को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, करना चाहता है। मित्रों, इसी को लेकर के मैं आज आपसे कुछ तथ्यों पर बात करने जा रहा हूं। एक विचारक हुए हैं लाइफ मैनेजमेंट के क्षेत्र में, उन्होंने काफी काम किया है, ग्लैडवेल। उन्होंने सेल्फ मेड की जो परिभाषा है, अभी तक सेल्फ मेड की, या यूं कह लीजिए जो प्रचलित धारणा है, उसको बिल्कुल खारिज कर दिया है, बिल्कुल खारिज। सेल्फ मेड का मतलब है क्या है कि मैं खुद बना हूं, जो कुछ भी किया है वह मैंने किया है। कितना अच्छा लगता है ना कहने में कि जो कुछ भी किया मैंने किया, मेरी किसी ने मदद नहीं की, यानी कि मैं इतना शक्तिमान हूं। सोच के देखिए कि खुद के ईगो को कितनी संतुष्टि मिलती है ना, कितना अच्छा लगता है कि अरे यार मैं तो इतना हूं और ये मैं कर चुका हूं तो आगे भी मैं कुछ कर ले जाऊंगा। तो इसको वो झुठलाते हैं कि नहीं नहीं ये फालतू की चीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिन्हें हम सेलिब्रिटी कहते हैं, जिन्हें हम बहुत ही सफल व्यक्ति कहते हैं, या यूं कह लीजिए कि जिन्हें हम सुपरस्टार कहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि केवल अपने प्रतिभा के दम पर या अपनी मेहनत के दम पर ही सफल हो जाते हैं, बल्कि उन्होंने सिद्ध किया है कि उनकी इस सफलता में बहुत सारी जो छुपी हुई सुविधाएं होती हैं और जो उनके जीवन में कुछ अवसर आते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ। एक तो उनकी छुपी हुई प्रतिभाएं जिन्हें वो खुद नहीं समझ पाते, फिर सुविधाएं जो वो देख नहीं पाते और अवसर जिसे वो पकड़ लेते हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। मित्रों, उनके द्वारा दिए गए दो उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा और इन उदाहरणों को आधार बनाकर आप सब अपने आसपास के उन सफल लोगों के बारे में सोचिएगा कि इन लोगों ने इन चीजों को का कैसे इस्तेमाल किया, राइट? तो पहले तो हम आते हैं प्रतिभा के ऊपर। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जो सफलता होती है उसके लिए ये बहुत जरूरी नहीं है कि वो बहुत प्रतिभावान हो, कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ जाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। और उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण दिया है, एक नाम है क्रिस्टोफर लंगन। क्रिस्टोफर लंगन, देखिए मैं इसीलिए आपको बहुत ही जो तथ्यात्मक चीज है, जो ऐतिहासिक चीज है, जो यथार्थ है, केवल उनका ही उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, उनकी ही बातें मैं करने जा रहा हूं। तो जो लंगन साहब थे उनका जो आईक्यू था वो 195 था। आईक्यू आप सब जानते, 195 मतलब अद्भुत प्रतिभाशाली, इसलिए कि आइंस्टीन का जो आईक्यू था वो 150 था। 150 यानी कि 150 की तुलना में 195 कितने परसेंट ज्यादा है, आप अनुमान लगा लीजिए, राइट? लगभग 30% ज्यादा है। लेकिन मालूम है कि ये लंगन साहब क्या करते थे? लंगन साहब अस्तबल में काम करते करते दुनिया से चल बसे, बस केवल अस्तबल में ही बने रहे, जबकि उनके आईक्यू इतना हाई था। यानी कि आप कह लीजिए, अगर आईक्यू को ही हम सब कुछ मान ले, प्रतिभा का पर्याय मान ले, सफलता का आधार मान ले, तो वो चीज तो उनके पास थी, तो वो अस्तबल से क्यों नहीं निकल पाए? पूरी जिंदगी भर अस्तबल में कई काम करते रह गए। और फिर आइंस्टीन, जिनका मैंने बताया कि केवल 150 के आसपास था, और आइंस्टीन कहां से कहां पहुंच गए। तो एक बात सिद्ध होती है कि केवल प्रतिभा, केवल ज्ञान, केवल मेमोरी आपको सफल नहीं बना सकता, राइट? एक दूसरा उदाहरण उन्होंने बिल गेट्स का दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। चलिए, आईक्यू तो अब ये जो हमारा है सो है, नहीं है सो नहीं है, लेकिन जो बिल गेट्स का मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसमें देखिए कि कैसे जो छुपी हुई सुविधाएं हैं, राइट, और जो अवसर हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट? बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है मित्रों कि आज वो जहां हैं, कंप्यूटर की दुनिया के आज बादशाह हैं, वो नहीं होते यदि उनका जो एक प्राइवेट स्कूल था जहां वो पढ़ते थे उसने उनको एक कंप्यूटर नहीं दिया होता। उस स्कूल ने उनको एक कंप्यूटर दे दिया जब बच्चे ही थे, मतलब बहुत ज्यादा उम्र नहीं हुई थी, टीन एज में थे, तो उनको कंप्यूटर मिल गया और उस कंप्यूटर के प्रति उनकी बहुत ज्यादा रुचि बढ़ गई। कल्पना करके देखिए कि वो कंप्यूटर उनको नहीं दिया गया होता तो। लेकिन यही बात नहीं हुई, बात यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद वो वाशिंगटन के पास रह रहे थे, वाशिंगटन जो राजधानी है अमेरिका की, उसके पास में रह रहे थे, राइट? फिर से रिसर्च में उन्होंने पाया कि वाशिंगटन के पास में रहने के कारण बिल गेट्स को यह सुविधा मिल गई कि वो उस समय जो भी कंप्यूटर थे, जो बेस्ट, जो बेहतर कंप्यूटर थे, उनका वो इस्तेमाल कर सके, और उसी ने उन्हें आज दुनिया का जाना माना बिल गेट्स बना दिया। अगर वो वाशिंगटन में नहीं रहे होते तो क्या करते कि वो वाशिंगटन के पास, सॉरी, तो वो अपना जो उनके पास उन्नत छोटा सा कंप्यूटर था उसको लेकर के कहीं चले गए होते और उसी को ही सब कुछ मान करके बैठे होते और वहां का जो वातावरण था उसके हिसाब से वो सब कुछ करने लगते, खत्म हो गई, और बिल गेट्स अपनी जिंदगी पूरी करके चले जाते। मित्रों, यहां सवाल इस बात का नहीं है कि उनकी जिंदगी पूरी होती या नहीं होती, जिंदगी तो सबकी पूरी होती है, लेकिन आज जो बिल गेट्स है वो बिल गेट्स नहीं हुए होते। एक के बारे में नहीं है मित्रों, सैकड़ों के बारे में है। रामानुजन को आज हम जानते हैं क्योंकि उन्हें इंग्लैंड बुला लिया गया, उन्होंने एक चिट्ठी भर लिख दी और उस चिट्ठी को पढ़ करके उन्हें बुलावा आ गया और वहां जाकर के वो काम करने लगे। तो उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी होती तो रामानुजन नहीं होते, राइट। गांधी जी के बारे में मैं सोचता हूं कि अगर वो बैरिस्टर नहीं बने होते तो क्या होता। बैरिस्टर बन जाने के बाद अगर उन्होंने वकालत छोड़कर दक्षिण अफ्रीका जाने का निर्णय नहीं लिया होता तो क्या होता, क्योंकि उनको एक ऑफर ही मिला था सेठ अब्दुल्ला का, जिसके दक्षिण अफ्रीका में बहुत व्यापार था, कि भैया तुम्हारा यहां चल नहीं रहा है वकालत, तुम करना भी नहीं चाहते हो तो चले जाओ दक्षिण अफ्रीका में, वहां मेरी तरफ से जो भी केसेस चलते हैं उनको निपटाते रहना। तो गांधी जी ने भी सोचा कि यार अच्छा है वहीं चलो, और नहीं गए होते तो, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका नहीं तो गांधी को महात्मा बनाया, द मेकिंग ऑफ महात्मा। तो मित्रों इन सब चीजों पर हमें विचार करना चाहिए। वो हेनरी जो आज दुनिया के महानतम कहानीकार हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि मैं आज जो कुछ भी वो नहीं रहा होता यदि मैंने न्यूयॉर्क की गलियों की खाक नहीं छानी होती। तो दोस्तों सफलता के बहुत से स्थापित मापदंड होते हैं, याद रखिए, हमें उन्हें समझना पड़ता है, उन्हें पकड़ना पड़ता है, और जिन उपलब्धियों को हम हासिल करना चाहते हैं उन उपलब्धियों की जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को प्राप्त करना पड़ता है, तब जाकर कहीं सफलता मिलती है। सोच भर लेने से कुछ नहीं हो जाता है कि सूरज को कौन रोक सका है तो मुझे भी कौन रोक सकेगा। ये केवल एक इमोशनल, मुझे लगता है कि एक तथ्य है, थोड़ा सा सच भी हो सकता है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के, बिना निर्णय के, बिना भावनात्मक शक्ति के तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन सिर्फ भावनात्मक शक्ति के दम पर भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं। तो मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब आप सबकी इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।